नोच दिया, ऐसे उसको मार पीट करके छोड़ दिया। वो उड़ता उड़ता रावण के पास गया। रावण ने कहा, अरे सुख, ये क्या तेरे जगह जगह खरोंच आई हुई है, मुंह उतरा हुआ है, आंखों से तेरे पानी बह रहा है, क्या बात है, शत्रुओं ने पीटा क्या? सुख बोलता है कि महाराज, आपकी आज्ञा से मैं समुद्र के उत्तर भाग में गया। आपने जो जो वचन मुझे सुग्रीव के लिए कहने थे वो सब कहे। मैं अपनी बात पूरी कहता उससे पहले ही सुग्रीव भभक गए और कई बंदर चारों तरफ से मुझे घेर लिए, पकड़ करके मुक्कों से, लातों से, दांतों से खूब मारने लगे। तब जो है मैंने उनको राम की सौगंध दिलाई और राम जी से भी प्रार्थना की, हे राम मेरी रक्षा करो। तो राम जी के कहने से एकदम बंदर वहीं के वहीं खड़े रहे। मैंने देखा है कि वहां अनुशासन बहुत विचित्र ढंग का है। एक बात यदि कोई बड़ा बोल देता है तो तत्काल छोटे उस बात को स्वीकार करते हैं, कोई किसी की बात का लोप नहीं करता है। सुग्रीव ने साफ कह दिया है कि रावण को बोल देना कि जो मेरे भाई की गति हुई है उसकी गति भी वैसी ही होने वाली है। तुमने इतनी बड़ी बात कहने का साहस कर लिया, इसका फल तुम हमको युद्ध के अंदर साहस करके दिखाना। सेतु बनाया, पुल बनाया, वहां पुल बना करके सारी सेना लंका में आ गई। लंका में आने के बाद मुझे राम जी की आज्ञा से छोड़ दिया गया, तब आपके पास आया हूं। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, मैंने आपकी भी सेना देखी है और राम जी की भी सेना देख ली है। राम जी की सेना को आपकी सेना पार नहीं पा सकती, इसलिए आपको राम जी के साथ संधि करनी चाहिए। सारी की सारी सेना पुल बनाकर आ गई, समुद्र को लांघना हमको बड़ा नहीं लगा, क्योंकि समुद्र को तो आपके राक्षस भी बहुत लांघते रहते हैं, परंतु जो बंदर लांग नहीं सकते हैं उनको उनको भी पुल मार्ग से लाने की सोचना और पुल बना देना, ये तो आपने भी काम नहीं किया, वो काम इस सेना ने कर दिया। बड़ा आश्चर्य है, इसलिए मैं तो आपसे कहता हूं कि अभी बड़ा अच्छा मौका है, युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, आप राम से निवेदन कीजिए कि आप लंका में आए हैं, हमसे भूल हो गई, सीता को हम उठा के ले आए, आपसे छिप करके ले आए, आप अपनी गलती मान करके और जो है राम जी के पास जाओ, सीता जी को उन्हें अर्पित कर दो और अर्पित करके और उनसे कह दो कि या तो आप सीता को भी ले लो और जो है हमारी गलती को माफ कर दो, नहीं तो फिर अब आप जो हमको दंड दें वो दंड स्वीकार करने के लिए तैयार है, ये आप पहले ही कर लो, नहीं तो दो काम में एक काम सीता तो ये लेकर के जाएंगे, सीता को ये छोड़ने वाले नहीं है। किसी बंदर में कोई उत्साह की कमी नहीं। राम जी ने मुझे विशेषता से कहा कि सुख, जाकर के तुम रावण को मेरे वचनों से अवगत करा देना कि जिस बल से तुम सीता को लेकर के आए थे उस बल को थोड़ा आज दिखा तो दो हमारे सामने। इसी लंका में अब सीता भी है और इसी लंका में हम भी हैं, तुम भी अपनी सेना के साथ हो, हम भी अपने सेना के साथ हैं, अब अपने में से जो जीत जाएगा वो सीता को रख लेगा, अपने पास जो तुम्हारे पास सैन्य बल है वो लेकर आओ। स्वकाले नगरीम लंकाम प्राकाराम सतोरणाम, और कह देना कि कल से युद्ध प्रारंभ होगा और आपकी लंका ध्वस्त होने लग जाएगी। मैंने देखा है कि राम का क्रोध अमोघ होता है, व्यर्थ नहीं जाता है, और उन्होंने कहा है कि मैं क्रोध से ही सब प्रकार से जो है रावण के सामने युद्ध करूंगा। मैंने रावण से बहुत आशा की शायद वो समझ जाएगा, विभीषण से भी नहीं समझा है, किसी से भी नहीं समझा है, तो अब क्रोध के द्वारा ही समझेगा ऐसा लगता है। ये देखो ये सारी सेना आपको दिखाई दे रही होगी, ये चारों व्यक्ति जब एक साथ खड़े हैं तब आपके मन में क्या भय आ रहा होगा। ये देखो वो राम, वो देखो उनके पास में ये बाई और लक्ष्मण, राम जी के दाई और सुग्रीव, और इधर ये सुग्रीव के दाई और विभीषण, ये चारों आपस में कोई विचार विमर्श कर रहे हैं। लंका के नाश के लिए ये चार नहीं, इनमें से एक ही भी पर्याप्त है। ये चारों और इतनी बड़ी सेना लेकर आए हैं। उत्पाट्य भस्मी करने सर्वे तिष्ठन्तु बानराः, ये सब बानर इसी बात की प्रतीक्षा में है कि कब हमको आज्ञा मिले और कब हम लंका को उखाड़ करके और हम लंका को ध्वस्त कर दें, भस्म कर दें। एक की बात, एक राम ही पर्याप्त है रावण, जैसा राम का बल मैं जानता हूं। ये देखो गर्जना करने वाले बानर, इनकी संख्या कोई बता नहीं सकता है। ये जो लंका की तरफ बार बार घूर घूर के देख रहा है, जो हजारों हजारों 1,00,000 सेनापतियों का सेनापति है, वो सुग्रीव सेना का भी सेनापति नील है और ये अग्नि का पुत्र है। ये जो पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाला और जो पीले पीले केसों वाला है, जो फूलों के अंदर मंजरियों के समान है और जो बार बार अपनी पूंछ को पटक रहा है, ये बाली पुत्र अंगद है और ये अपनी सेना में सेनापति है। और इस अंगद के पास, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो केसरी का पुत्र हनुमान है, जिसने आपके पुत्र को मारा है और लंका को पहले से ही जला दिया है। हनुमान जी के आगे ये श्वेत वर्ण वाले और सफेद बाल वाले बड़े बुद्धि में पराक्रम, इनका नाम भी श्वेत है, ये श्वेत नाम के वानर हैं, और ये श्वेत नाम के वानर बार बार सुग्रीव से सलाह ले ले करके अपने सेना को व्यवस्थित करने में लगे हैं। इनके क्रोध का मुकाबला करने वाला आपके लंका में एक भी योद्धा नहीं है। ये जो सामने सिंह के समान आपको पराक्रमी और जो है जोर जोर से नाद कर रहा है, लंका का नाश करने में ये पर्याप्त है, इसका नाम रंभ है। और ये जो लंका को मानो जला ही देगा, ऐसा ये सर्व नाम का बानर है, ये करोड़ों करोड़ों सेनापतियों का सेनापति है, इसके पास इतनी सेना है, एक एक का कहां तक वर्णन करें। ये मैंद है, द्विविध है, पनस है, ये बहुत बलवान है, और ये सब देखो जिसको चारों तरफ से घेरे हुए है वो है नल, जिसने बड़े बुद्धि कौशल से ये पुल बनाया है। ये विश्वकर्मा का बेटा माना जाता है। अब एक एक बानर के वर्णन के अंदर बहुत सा समय लगेगा। इन बंदरों के अंदर जिन जिन का मैंने बल बताया है, वो तो मैंने असंख्य चावलों में से एक दो चावल आदमी देख करके सब चावल का अनुमान लगा लेते हैं कि चावल सिद्ध हो गए कि नहीं। तो आप दो चार चावल ले लोगे, हाँ भाई कड़ा कर सब चावल सिद्ध हो गए, अब इतना बड़ा कड़ा है, चावल बने कि नहीं बने, एक एक को कहां देखेंगे, एक देखो देख लिया ऐसे ही है। ऐसे ही जिनका मैंने नाम लिया है ये सब बंदर, सारे बंदर ऐसे ही हैं। ये लंका को एकदम एकदम चूर्ण करने के लिए समर्थ हैं। इनकी संख्या कितनी हो सकती है सुख? इनकी संख्या क्या बताएं, 1000 करोड़ को, 1000 करोड़ को आप 9, 5 और 7 21 से जोड़ो, 21000 करोड़। और शंख सहस्र, 1000 शंख और 100 अरब, 100 अरब भी नहीं, अरबुद शतानी, सैकड़ों अरब, इतनी इनकी संख्या है। और ये भी संख्या मैंने केवल अनुमान से लगाई है, और अभी तक प्रश्रवण पर्वत पर सुना है कि बांदरों की सेना यूं ही आ रही है, यूं आ रही, रेला यूं ही चल रहा है, यूं ही लंका में आ गए और वहां से अभी ऐसे पूरी भरी पड़ी है सेना। ये मैंने सुग्रीव के प्रधान प्रधान मंत्रियों का वर्णन बताया है, बहुतों को हम जानते ही नहीं है, उनका वर्णन भी नहीं जानते, उनका बल पौरुष भी नहीं जानते, वो बड़े बड़े योद्धा है, उनका नाम हम जानते नहीं है, हमें लगता है शायद सुग्रीव भी उनका नाम नहीं जानते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे रावण, आप लंका के राज्य को सदा के लिए सुरक्षित रखना चाहते हो, यदि आप अपने पुत्र पौत्रों के साथ सदा ही सुखी रहना चाहते हो तो मेरी दृष्टि से आप राम को देखिए, राम मनुष्य नहीं है, ये साक्षात आदि नारायण परात्पर परब्रह्म परमेश्वर है, और सीता केवल जनक की पुत्री ही नहीं है, ये भगवान की चित शक्ति है, और सीता के कारण से ही सारा संसार बनता है जिसको माया बोलते हैं। भक्तों के लिए ये भक्ति है और जगत के लिए ये माया है। राम इसी सीता के द्वारा भक्तों को भक्ति देते हैं और जगत में रहने वालों को ये जगत देती है, ये सीता है, सब कुछ यही है। इन्हीं राम ने और सीता ने स्थावर जंगम सारी जगत का निर्माण किया है। ये दोनों पिता माता हैं, सारे संसार के मां और बाप हैं। हे महाराज, ऐसे राम और सीता के साथ आपने बैर किया है, आप सोचिए क्या आपका ये बैर संभल जाएगा? जगत की माता को आपने जिस प्रकार से हर करके लाए हैं, इसका बहुत बड़ा अपराध होगा, आपने मूर्खता के अंदर ये काम किया है। आप कोई भी काम करें उससे पहले विचार तो करें कि क्षण क्षण में नष्ट होने वाले इस संसार और शरीर को लेकर जो कि 24 तत्वों से बना हुआ है, आखिर इसका हमारे साथ संबंध क्या है और कितना दिन है? जिस संबंध को लेकर हम इतनी बड़ी बातें बनाते हैं, आप विचार करो, आत्मा का शरीर के साथ कभी संबंध हो सकता है क्या? जो शरीर इतना गंदगी से भरा हुआ है, जिसमें मांस है, खून है, हड्डी है, मलमूत्र है, ऐसा शरीर भी यदि आपको अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, तो ये सुंदरता शरीर की है या किसी और की है? आप ये देखें कि ऐसे गंदे शरीर को भी सुंदर बनाने वाला ये आत्मा खुद कितना सुंदर होगा। उस सुंदरता को तो आप भूल गए और शारीरिक सुंदरता को आप देखने लगे हैं, इस शरीर को मैं और मेरा मानने लगे हैं। ऐसा करने से ही आप ब्रह्म हत्या आदि पाप के अंदर पड़े, यही आपने पाप पाला। ये शरीर तो अपना भोग काल पूरा करके चला जाएगा, उसके बाद इसका फल आपको मिलेगा, कितना यातना देह मिलेगा, भविष्य की तरफ आपने विचार नहीं किया है। पाप पुण्य का फल सुख और दुख होता है, तो सुख होता है वो तो दुख में ही बदलता है, अतएव ये दुख ही दुख देने वाला है। इसी शरीर के साथ संयोग करके आत्मा कितना निंद्य कर्म करता है। जब तक मैं शरीर हूं ये भावना रहती है, तब तक उसको मैं करता हूं ये भी भावना करनी पड़ेगी, और मैं करता हूं ये मानेगा तब तक उसको अपने कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा, क्यों करने वाला वो हो गया ना, करने वाला वो हो गया तब क्या होगा, उसका फल भी उसी को ही भोगना पड़ेगा। ये एक अध्यास हो गया, अध्यास अन्योन्याध्यास, एक दूसरे का एक दूसरे के अंदर झूठे ही मिलन हो गया। आत्मा तो कहती है शरीर मैं हूं, और शरीर चाहता है कि मैं सदा बना रहूं। अब आत्मा का धर्म तो शरीर में और शरीर का धर्म आत्मा में, ये आपस में मिल गया, इसलिए कुछ धुंधलेपन आने से समझ में नहीं आ रहा है। आत्मा का शरीर के साथ कभी संबंध नहीं हो सकता, वो निर्मल है, शुद्ध है। इसलिए आप शरीर से मैंपन का भाव हटा दीजिए। अपने ही अज्ञान से मनुष्य अपने ही बंधन में फंसता है, उसको फंसाने वाला कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तुम अपने आत्मा का स्मरण करो और उस आत्मस्मरण में मस्त रहो और आनंदित रहो। क्या राज्य से अब लेना देना आपको, क्या बेटों से, क्या स्त्री से, क्या लोगे आप, ये सब चीजें तो नरक में भी तैयार है, वहां भी आपको बेटा बेटी मिल जाएंगे, परिवार कुटुंब मिल जाएगा, सुख दुख जो यहां लेते हो वो वहां भी मिल जाएगा, शुकर कुकर योनि में भी आपको मिल जाएगा। हे रावण, ये शरीर विवेक का खजाना है, ये विवेक का खजाना आगे मिलने वाला नहीं है, और उसमें भी आप ब्राह्मण हो और पुलस्त्य कुल में पैदा हुए हो और कर्म भूमि भारतवर्ष में आप आए हो। आप विचार करो, कोई समझदार आदमी इस नाशवान शरीर को मैं मान करके भोगों के वशीभूत हो जाएगा? बुद्धिमान आदमी नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने ब्राह्मणत्व को पहचानो। आप राक्षस हूं और मैं लंका का राजा हूं और बल वाला हूं, इतना ही मत देखो, आत्मा की दृष्टि से देखो। अज्ञानियों की तरह से आप भोगों के पीछे मत दौड़ो। इतः परम वा त्यक्त्वा त्वं सर्वसंगं समाश्रय। अब आप भोगों का एकदम त्याग कर दो, त्याग करके और परब्रह्म परमात्मा का संग करो। कितना बड़ा सौभाग्य है रावण, आपकी लंका के अंदर स्वयं भगवान चला करके आए हैं। इन बंदरों को तुम सैनिक न मान करके राम के भक्त मान करके इनका आदर करो, सीता को समर्पित कर दो, राम के सेवक बनो। राम कितने दयालु हैं, मैंने देखा विभीषण जब उनके चरणों की शरण में गया तो सुग्रीव आदि ने बहुत विरोध किया, पर राम का हृदय का ज्ञान मुझे वारे। कितने राम दयालु विश्वासी हैं, इसलिए मैं राम की दया पर विश्वास करके कहता हूं कि आप सीता को समर्पित कर दोगे, राम के चरणानुगामी हो जाओगे, राम आपको छाती से लगाएंगे। और उनकी अनेक विशेषताओं में ये विशेषता है कि राम पिछले के पिछले पाप देखते ही नहीं है। आप मेरे वाक्यों को ठीक अच्छी तरह से समझिए, नहीं तो आपको नीचे से नीचे जाना पड़ेगा। विष्णु लोक प्राप्त करने का बहुत अच्छा समय आया है महाराज रावण, हमारे हित की बात को आप मानिए। रावण, आपने सब कुछ प्राप्त किया है लेकिन जीवन में सत्संग प्राप्त नहीं किया, इसी कारण से आपकी बात जच नहीं रही है। आप सबके शरण्य भगवान, उनकी शरणागति स्वीकार करो, आप उनके स्वरूप को हृदय में भी धारण कर लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। वे भगवान आपके नगर में पधार गए। सीता जी के पास जाकर सीता जी से क्षमा याचना करो। राम ये बड़े हैं, बड़ों से क्षमा याचना करने में किस बात की लाज आती है आपको? ये हमारे पिता माता हैं, पिता माता को प्रणाम करने में या इनके शरण जाने में और इनसे क्षमा याचना करने में किस बात का भय है? आप देखिए सुग्रीव भी तो किसी देश के राजा हैं, और इतना ही नहीं विभीषण को इन्होंने लंका का राज्य वहां दे दिया कि हम तुमको लंका का राजा मानते हैं, तो राजा तो है ही ना ये। तो ये भी जब उनके चरणों की सेवा में है तो आपको उनके चरणों की सेवा में जाने से क्या नुकसान दिखता है? पूरी बात और अंत में कह दिया कि बड़ा अच्छा मौका है, आप अपने पुत्र को राजगद्दी दे दो। और राम जी से कह दो कि राम अब मुझे आप कहीं भी भजन करने के लिए भेज दो, मैं तो आपका हो गया। मंदोदरी आदि रानी अपने पुत्रों के पास रहेगी, आप राम जी के साथ हो जाओ। विभीषण ने भी तो अपने कुटुंब का त्याग किया है ना, विभीषण अपने साथ ने अपने बेटा बेटी को ले गया, विभीषण ने अपनी पत्नी को ले गया, ने धन संपत्ति ले गया। विभीषण केवल अपने परिवार में किसी को नहीं लिया, चार अपने विश्वस्त थे ये साथ में गए हैं, क्योंकि एक राजा का लड़का है अतः उसके साथ दो चार आदमी रहने चाहिए, इसलिए ले गया। बाकी कुटुंब को कितना जल्दी विभीषण ने त्यागा है। हे राम ये मौका है, अब मौका चूकने के बाद तो फिर कुछ भी नहीं है। पार्वती से कहते हैं भगवान शंकर की सुनो उमे, कैसी विचित्र और श्रेष्ठ बात इस सुख ने कही है, परंतु रावण इतना क्रोध के अंदर आग बबूला हो गया, धमकाने लगा जैसे कोई आग के अंदर उसको बैठा दिया हो, ऐसे उछल उछल करके चिंगारे के समान उछल उछल करके उसको फटकारते हुए कहता है, अरे मेरे अन्न से तू पेट भरता है, मेरे यहां नौकरी करता है, दुष्ट तू मुझे गुरु की तरह समझाता है, जो शत्रु भाव से मेरे नगर में आ चुका है उसकी तू इतनी प्रशंसा करता है, और तू जानता है कि त्रिलोकी में मेरे समान कोई वीर नहीं है, तो उसको तू एक वनेचर की शरण में जाने की बात बोलता है, मुझे शिक्षा देते हुए तुझे लाज नहीं आती? मैं यदि तुम्हारे पिछले जन्मों को याद न करूं तो अभी तुझे मैं मृत्यु दंड दे सकता हूं, लेकिन क्या करूं मुझे पिछले जन्म की बातें याद आ रही हैं, इसलिए मैं तुझे मृत्यु दंड नहीं देता हूं, तो निकल जाए यहां से। त्वमेव श्रोतुम नमे क्षमम, मैं तुमसे कुछ भी नहीं सुनना चाहता, अब तुम्हारी बात बंद करो, चले जाओ यहां से, फटकार दिया। उसने कहा कि महाराज बड़ी कृपा है, महाप्रसाद बड़ी कृपा हो गई, वहां से रवाना हो गया। पार्वती जी पूछती हैं कि जगद आराध्य हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सुख को रावण ने ये कहा कि मैं पिछले उपकारों को याद करके मैं तुमको कुछ नहीं कह पा रहा हूं, तो ये पिछले क्या उपकार है सुख का, ये क्या कथा है महाराज? शंकर भगवान कहने लगे कि हे सुमुखी सुकोपि ब्राह्मण है पूर्वम, ये सुख था ये पिछले जन्म में ब्राह्मण था, और बड़ा ब्रह्मवादी ब्राह्मण था, बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण था, ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मण था, वानप्रस्थ विधि से वो वन के अंदर रहता था, और वन के अंदर रह करके और वो भगवान का भजन करता था, ब्रह्म तत्व का जानने वाला था। देवता लोग इस सुख के पास आते थे और कहते थे कि आप कोई ऐसा अनुष्ठान करो, ऐसा आशीर्वाद दो जिससे देवताओं की वृद्धि हो और राक्षसों का नाश हो। बहुत जो है हमको और ये राक्षस लोग कष्ट देते हैं। तब इस शुक ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंदर अनेक प्रकार की ऐसी ऐसी आहुति दी मंत्र बोल करके, जिससे देवताओं को अनेक बार विजय प्रदान करवाई। राक्षस लोग इस सुख से चिढ़ने लग गए थे, नाराज हो गए कि यदि सुख न हो तो ये देवता लोगों को इतना बड़ा यज्ञ से लाभ देने वाला दूसरा कोई है नहीं, ये सुख का कैसे नाश हो। तो इन राक्षसों में एक वज्रदंष्ट नाम का राक्षस था। वो राक्षस सुक के जंगल के अंदर ही छिपा रहता था, घात लगाए रहता था। शरीर से तो मार सकते नहीं थे क्योंकि ये मंत्र कवच के द्वारा अपने को सुरक्षित रखते थे, इसलिए कोई शस्त्र तो इन पर चल नहीं सकता था। इसलिए वो यही ताक में रहता कि कब ये अपने जीवन से भ्रष्ट होवे और कब मैं इनको जो है दबोचूं, इसी फिराक में रहता था। पर ये सब कोई पोल उनको इस सुख के जीवन में मिली नहीं। एक बार की बात है, ऋषि शिरोमणि अगस्त्य ऋषि बड़े खुश होकर सुख के पास आए धन्यवाद देने के लिए। हे सुख, तुम ब्रह्मिष्ट हो, ब्रह्मवादी हो, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम्हारे द्वारा किया हुआ जो यज्ञ है उस यज्ञ से देवताओं को बड़ी विजय मिलती है, अतएव मैं आज तुमसे बहुत प्रेम से मिलने के लिए आया हूं। सुक ने अगस्त्य का बहुत प्रेम से सत्कार किया, उसको बैठाया और कहा कि महाराज भोजन प्रसाद पाओ। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि देखो, हम यहां स्नान करके आ जाते हैं, स्नान करने के बाद में हम भोजन करेंगे। तो अगस्त्य ऋषि स्नान करने के लिए गए। इधर वज्रदंष्ट नाम का जो राक्षस था वो अगस्त्य जैसा ही रूप बना करके और कुटिया में आया, आकर के और सुख से कहने लगा, हे महाराज सुख। अरे महाराज, नायाए इतने जल्दी? नहीं नहीं नहीं, तो हाँ मैंने भी सोचा इतने जल्दी कैसे स्नान करेंगे, अभी तो आप निकले ही थे। नहीं नहीं नहीं, एक बात कहना भूल गया। अब देखो, असली अगस्त्य जी तो स्नान करने गए हैं, ये राक्षस है अगस्त्य जैसा ही रूप बना करके वहां आया। कहने लगे, अरे सुख, आज तो हमारे मन में मांस खाने की इच्छा हो रही है, और छाक का मांस होना चाहिए, बकरे का मांस। तो सुख ने कहा, हे महाराज, हे अगस्त्य ऋषि, आप ऋषि शिरोमणि हैं, आप श्रेष्ठ ऋषि हैं, आप तो जनता को कितने ही अच्छी बातें बताते हैं, शास्त्र लिखते हैं, आप आज ये मांस की बात क्यों बोले? अरे कई दिन हो गए, हम कभी कभी मांस ले लेते हैं, तो थोड़ा हमको छाक का मांस चाहिए। कि महाराज, मैं देखो, मैं तुम्हारे घर आया हूं और तुमने कहा कि भोजन करो, अब तुमने भोजन के निमंत्रण देने के बाद भी तुम हमको भोजन नहीं कराओ तो फिर देख लो, फिर अब अतिथि सत्कार तुम्हारा नहीं हुआ। तो वो सुख बेचारा डर गया कि इतने बड़े ऋषि और अगस्त्य ऋषि जैसे उनका सत्कार यदि हम नहीं कर पाए तो कैसी बात हो जाएगी, अतएव डर गए। कहने लगे, महाराज जो आपकी आज्ञा। ठीक, सके चले गए। वो चला गया राक्षस। राक्षस जाकर के फिर उसने दूसरा रूप बनाया। राक्षस ने क्या किया कि दूसरा रूप बना करके और सुख की जो पत्नी है उसका रूप बनाया, और सुख की जो असली पत्नी थी उस पत्नी को अंदर कोठार में बंद कर दिया और मूर्छित कर दिया, वो चिल्ला न सके, और स्वयं जाकर के और उसके पत्नी जैसा रूप बना करके एकदम वैसा ही सुख को बिचारे को पता नहीं और ला करके मांस बना दिया। अब उसने मांस बनाया, कुछ बकरे का क्या और भी क्या, कुछ मनुष्यों का मांस, ऐसे करके कई मांस का भोजन बना दिया। इतने में वो असली अगस्त ऋषि थे वो आए, वो आए और बैठे गए। अच्छा भोजन कराओ, तो भोजन के लिए बैठे बैठे, तो अब जो है वही आई स्त्री, भोजन पुरुष ने लगी, ये काम तो माताओं बहनों का ही होता है। अब वो जो राक्षस था वो आकर कह रही हूं भोजन पुरुष ने लगा, और पुरुष ने लगा तो देखा अरे ये मांस मेरे थाली में, ये तुमने क्या पुरुष दिया भाई। अभक्षम मानुषम मांसम दत्तवान असी दुर्मते, अरे दुष्ट सुख ये क्या किया, हमारे ऋषियों के धर्म को बिगाड़ते हो, मांस पुरुष दिया। कहा कि महाराज अभी आपने मांस के लिए कहा था ना, मैंने कहा कहा हम कभी मांस खाते हैं ऋषि मुनि, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो राक्षस हो जाओ, मांसम दे थी विस्तरा, आपने तो कहा था अब जो है राक्षस होने का साप दे दिया। सुख ने कहा महाराज साप देने से पहले पूरी बात तो देखनी चाहिए, अभी अभी आप आए थे, आपने कहा कि मैं मांस खाऊंगा, मैंने कहा कि आप ऋषि हैं आप मांस क्यों खाते हैं, कहा कि नहीं हम कभी कभी लेते हैं, अतिथि धर्म तुम्हारा बिगड़ेगा, हम चाहेंगे वो चीज तुमको खिलानी पड़ेगी। आपने तो आग्रह किया, हमने कोई आग्रह नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, इधर जाके देखें तो वो राक्षस तो अदृश्य हो गया, वहां से भग गया। जाके देखते हैं कि मेरी पत्नी है वो जो ढूंढे तो वो जो है दूसरे कक्ष के अंदर बेहोश हुई भी पड़ी है। सुख ने जाकर कहा महाराज ये क्या हुआ। अगस्त ने कहा भाई मेरे मुंह से क्या निकल गया, ये क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी बेहोश हुई पड़ी है, किसी ने माया फैलाई है। बैठ करके ध्यान लगाया, ओहो तुम किसी राक्षसी माया से घिर गए सुख, कोई राक्षस आया मेरे रूप में और तुमको मांस खाने के लिए बोल गया बनाने के लिए। अब हो गया सो तो हो गया, तुम्हारा बड़ा भारी अपकार हुआ, इसमें तो कोई बात नहीं है उस राक्षस के द्वारा, और मैंने बिना विचार के तुमको श्राप दे दिया, तो श्राप दे दिया सो दे दिया, अब मैं तुमको साथ में वरदान भी देता हूं, तुम राक्षस हो गए ना अब तुम और कहीं मत जाना, तुम यहां से सीधे लंका चले जाओ, लंका जाकर के तुम रावण के वहां पर रहो, और इधर ब्रह्मा जी ने आदि नारायण भगवान से प्रार्थना की है, वो दशरथ के बेटा बनकर के अवतार ले चुके हैं। जब वे रावण के अपराध के लिए लंका पर चढ़ाई करने के लिए आएंगे, उस समय में तू चला करके गुप्तचर होकर के राम जी के दर्शन कर आना। तो वहां राम जी के सेवक तेरे शरीर पर यूं जो है छीलेंगे तो काटेंगे, तो वो तुम्हारे पाप का फल वहां इतने में ही पूरा हो जाएगा। और फिर जो है राम के दर्शन करने के बाद रावण के पास बैठकर राम की जितनी महिमा बताए और राम के जो परम भक्त वानर हैं उनका खूब बल पौरुष रावण के सामने खुला बताएगा, उसके बाद तेरा ये राक्षसत्व समाप्त हो जाएगा और वापस तू ब्राह्मण बना हुआ वहां पर आ जाएगा। भगवान की कथा कहने का ये पुण्य मिलेगा तुमको, तब तक तुमको ऐसा ही होना होगा। तब वो राक्षस बनकर के रावण के पास आया और गुप्तचर होकर के भगवान के दर्शन किए, बंदरों ने उसकी ये दशा बनाई, और फिर वो रावण के पास आकर राम की महिमा कहने लगा। इधर राम ने उसको भेज दिया, अब जो है वो गया वापिस वहां से, रावण ने कहा निकल जाए यहां से, वहां से आता है वह अपने वास्तविक रूप में आकर राम जी के चरणों में वंदना की उसने, और चरणों में वंदना करके अपनी जगह चला गया। इधर महाराज माल्यवान थे रावण के नाना, वो बड़े बुद्धिमान राक्षस थे, वे आए और बड़े प्रेम भाव से राक्षस को समझाने लगे कि देखो रावण यूं तो तुम लंका के राजा हो, हम राक्षसों के तुम राजा हो, और ऐसे तुम मेरे दोहिते हो, तो मैं तुमको अपना वत्स समझ करके अपना दोहित्र समझ करके तुम्हें प्यार की और हित की बात कहता हूं, जब से ये सीता तुम्हारे यहाँ आई है, सीता जी के चरण, कोई तो कहते हैं चौपट करण, तो कहा कि सीता जी के जब से चरण पड़े ना, तब से आपके लंका में बड़ी विपत्ति आई। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने और ढंग से कहा है, सीता सीत निशासम आई। सीता जी तो शरदकालीन रात्रि के समान है, सीता सीत निशासम आई। शरदकालीन की रात्रि कैसी ठिठुरन भरी होती है, कंपा देने वाली होती है, तो लंका को कंपा दिया है देखो। अस्तु, इन्होंने जब से सीता आई है तब से तुम्हारे लंका में अपशकुन हो रहे हैं। हमने भी तुमको कई बार कहा है कि सीता का शकुन लंका के लिए अच्छा नहीं है। अभी भी देख लो, तुम्हारी लंका के अंदर जितनी प्रतिमाएं हैं, इन प्रतिमाओं में पसीना आता है, प्रतिमाओं के आंखों के अंदर से पानी बहता है, और प्रतिमाएं संचालित हो गई हैं, यूं हिलने लग गई हैं। रुदंती देवलिंगानी स्विद्यंती प्रचलंती चे, और जो है प्रतिमाओं के पास जाओ तो इन प्रतिमाओं के अंदर से जो है अनेक प्रकार की वाष्प निकलती है, भाप सी निकलती है। कालिका है वो सफेद दांत, पीले दांत दिखा दिखा करके यूं हंसती है, ऐसे करके ऐसे डरती है जैसे कोई काल से खा जाएगी, दांत दिखा दिखा करके हंसती है। गौओं से गधे पैदा होने लग गए हैं, और मूसका नकुलई शहर मारजारीण सह, चूहे हैं वो नवलों के साथ खेलते हैं, बिलाओं के साथ खेलते हैं। मेघ हैं बड़े भयंकर ध्वनि कर रहे हैं, सर्प है ये गरुड़ों से लिपटे जा रहे हैं। एक पुरुष काला कलूटा पुरुष, सिर पर कोई बाल नहीं, मुंडित हुआ हुआ, खराब खराब जो है उसका चेहरा, दांत आगे आए हुए, लंका के अंदर खप्पर लिए हुए घूमता है। हमें लगता है कि काल है, काल ये सबको खा जाएगा। कालो गृहाणी सर्वेशाम काले काली त्वीक्षते, घर घर में घूम रहा है। हम तुमको बहुत बार समझाए, अभी भी समझाते हैं, सुनो रावण, कुल की रक्षा करनी हो तो बड़ी शांति के साथ धैर्य के साथ तुमको सीता जी को ले जाकर राम के समर्पित कर देना चाहिए। रामम नारायणम विद्धि, तुम क्यों भूल रहे हो, ये राम तो साक्षात नारायण है। भगवान के साथ द्वेष का त्याग करो। इस भवसागर से पार होने के लिए राम जी के चरणों को नौका बनाओ रावण, ऐसा सुंदर मौका नहीं आएगा। देखो बड़े बड़े योगी लोग अपने चित्त वृत्ति को इनके दर्शनों के लिए लगाने में लालायित रहते हैं, जीवन के जीवन लगा देते हैं। वे भगवान आदि नारायण भगवान तुम्हारे यहां देखो घर पर पधार गए, तुम्हारे देश में आ गए, तुम्हारे लंका में आ गए, अभी भी तुम इनको नहीं समझोगे। रावण चाहे कितना भी दुराचारी हो, लेकिन जो भगवान के पास चला जाता है उसके अंदर अपने आप भक्ति पैदा हो जाती है, और वो भक्ति अपने आप ही उसका उद्धार कर देती है। इसलिए बड़ा अच्छा मौका है, इस मौके का तुम लाभ ले। मदवाक्यम कुरु राजेंद्र कुल कौशल हेतवे, तुम्हारे कुल का कुशलता बढ़ेगी। रावण ने कहा कि हे माल्यवान जी, हमें लगता है कि किसी बंदर ने या हनुमान ने या और किसी ने तुमको बहुत बड़ा लालच दे दिया, घूस दे दी, और वो घूस देकर के तुमको हमारे से विपरीत करने की योजना बताई है। नहीं नहीं, शायद तुमको कोई किसी ने गुप्तचर ने आकर तुमको कहा होगा कि माल्यवान तुम रावण के नाना लगते हो, एक बार रावण से तुम सीता दिलवा दो, हम तुमको इतनी इतनी संपत्ति देंगे, इतनी संपत्ति देंगे जिसका कोई पारावार नहीं। इस बात के बिना तुम ऐसी बात बोल नहीं सकते थे, तुम लालच से बोल रहे हो माल्यवान, क्योंकि उनको पता है कि माल्यवान नाना लगता है, नाना की बात दोई तो कैसे टालेगा। अतएव उन्होंने बड़े षड्यंत्र के साथ तुम्हारे दिल के अंदर भेद बुद्धि पैदा की है। रामेण प्रेषितो नूनम भाससे त्वम अनर्गलम। तुम रावण की, तुम राम की इतनी प्रशंसा करते हो, तुमको राम इतना अच्छा लगने लगा, कभी देखा राम को, सुना राम को, रावण को गोद में पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, इसकी महिमा आप भूल गए। समर्थम मन्यसे केना हीनम पित्रा मुनि प्रियम राम। यदि इतना ही अच्छा हुआ होता तो सर्वप्रथम उसके मां बाप ही उसको क्यों देश से निकालते। आपने सुना कि नहीं, राज्य देने की बात थी, कुछ न कुछ अयोग्यता थी, कुछ न कुछ राम में कमी थी, इसलिए उनको अयोध्या से नहीं दंडकारण्य में भेजा गया। उधर आप विचार ही नहीं करते। और देखिए राम किसकी सेना लेकर आया है, बंदरों की सेना लेकर आया है। कोई अयोध्या का सैनिक आया, कोई अयोध्या में इसने समाचार दिए, सब अयोध्या वासियों ने इसको निकाल दिया है और तुम आकर के मेरे यहां प्रशंसा करते हो राम की। मेरे सामने प्रासाद अग्रे समासीन, तुम्हारी इन बातों से मेरी छाती धधकती है, बड़ी जलन पैदा होती है। आप मेरे नाना लगते हो, आप बुड्ढे हो, आपकी इज्जत रखता हूं, प्रतिष्ठा रखता हूं, आपने सो कह दिया सो कह दिया। आप यही सोच करके बोलना कि अब मैं कभी नहीं कहूंगा। माल्यवान वहां से चला गया। इधर भगवान अपने सैनिकों के साथ विचार विमर्श करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो विभीषण आदि में से किसी ने कहा, महाराज वो जो लंका के बीच में एक ऊंचा महल दिखता है, महल के ऊपर एक बहुत अच्छा मैदान है, उस मैदान के अंदर वो सिंहासन पर बैठा हुआ वो रावण है। अच्छा, वो क्या कर रहा है? वो हमारी सेना का निरीक्षण कर रहा है, अपने प्रधान प्रधान सेनापतियों के साथ बैठकर युद्ध के मोर्चे के विषय में विचार विमर्श कर रहा है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण धनुष देना, देख। धनुष लिया और एक बाण उन्होंने छोड़ा, वो अर्धचंद्राकार बाण, अर्धचंद्राकार बाण है वो, भगवान ने ही छोड़ा। सर उसके जो है वहां पर मुकुट थे, उन मुकुटों को उन्होंने फेंक दिया, उसने उसके छत्रों को काट दिया। और वो बाण कहां से आया, कैसे आया, रावण को पता ही नहीं चला। और तत्काल जाकर के वो बाण राम जी के तुनीर में आकर के समा गया। रावण बड़ा लज्जित हुआ। रावण कहा, अच्छा अच्छा चलो भाई, आज तो अपनी बात पूरी होगी, अब कल बात करेंगे। ऐसी वो बातों ही बातों में बात टाल करके और वहां से अपने निवास स्थान में चला गया। महल में जाकर सोचता है, ये क्या बात है, मेरा मुकुटों का गिरना, फिर कारण का पता नहीं चलना, आहु ये राक्षसान सर्वान प्रधान प्रधान अपने सेनापतियों को फिर बुलाया और बुला करके कहा कि देखिए, कुछ न कुछ तो माया का प्रभाव लंका में चालू हो गया है। अब आप बताइए कि युद्ध के लिए अपने पास क्या तैयारी, क्या तैयारी क्या है? हमारे पास सब तैयारी है, आपके आदेश की बात है। तो फिर आप बांदरों की सेना पर आक्रमण कर दीजिए। तो महिषई उष्ट्रई खरई सिंघई द्वीपी भी, अब कोई तो कहां, कोई मैं भैंसों पर, कोई ऊंटों पर, कोई गधों पर, कोई सिंहों पर, और कोई हाथियों पर बैठे बैठे बहुत से योद्धा अपने हाथ में जो जो शस्त्र रख सकते थे रख लेकर के और सीधे राम जी की सेना के अंदर गए। इधर भगवान ने बंदरों को बोल दिया कि ठीक है भाई, अब अपने भी युद्ध के लिए तैयार, उधर से वो आग निकल रहे हैं तो अपने इधर भी चलो, तो बड़े बड़े पर्वत ले लिए, बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ लिए, और ये इधर बानर भी तैयार। अब बानर जो है जोर से बोलते हैं, सियावर राम चंद्र की जय। जो राम जी की सेना में होंगे वो तो जय बोलेंगे भाई, सियावर राम चंद्र की जय, रामानुज लक्ष्मण की जय, वानर राज सुग्रीव की जय, तीनों की जय बोले। जय बोलने के बाद एवं घोषयंत है, ये घोषणा हो गई, अब जो है दोनों सेनाओं के पक्ष में जो है युद्ध की डंके बज गए और युद्ध होने लग गया। अंगद हनुमान कुमद नील नल सरब मैंद द्विविध जामवन दधिवक्त केसरी तार, ये बड़े बड़े लोग जो मुख्य मुख्य थे सब दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। अब आओ कौन आते हैं, जो आते गए उन सैनिकों को मारते गए, आते गए वो मारते गए। कई बंदरों ने तो पर्वत लिए, पर्वत लेकर के और लंका के अंदर ऊपर से ही फेंक दिया, गेंद फेंके ऐसे फेंक दिया। और कोई राक्षस आ गया बंदरों के कब्जे में, अब उसको उठा उठा के पटकना, लात मारना, और उसको गेंद जैसा गोल गोल बना करके लात मार मार करके आगे धकाना, फिर नाखूनों से दांतों से उसको काटना। राक्षस लोग बड़े घबरा गए, उनकी तोपें थी, उनके पास तलवारें थी, तो वो तोपें चलावे तो भाई तोपों के वहां पर बंदर ही जाकर बैठ गए, और तोपों का मुंह था वो इधर मोड़ दिया उधर लो, ये रावण की सेना की तरफ। राक्षसास्त्र तथा जगनु, इधर राक्षस भी बलवान, वो भी जय की आशा से बंदरों के ऊपर आए थे, बंदरों के द्वारा फेंके गए वो जो पर्वत थे वो पर्वत वो पकड़ लेते और वापस बंदरों की तरफ फेंकते, फिर बंदर उनको पकड़ लेते फिर वापस ऐसे फेंकते। ऐसे राक्षसों का बंदरों का अभूतपूर्व युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर बड़ा जोर जोर से नाद होने लगा, दसों दिशाएं वहां पर कांपने लग गई। राक्षस बानर बस मारो काटो यही बात चल रही थी। और देखो राम जी तो साक्षात विष्णु भगवान, बंदर है ये साक्षात देवताओं के अंश, अब इस बात को कौन जाने। और ये सब अमृत पिए हुए के समान थे, और सीता भी मर, इधर रावण था वो सीता के कारण से वो पापी बना हुआ, सीता का स्पर्श करने का पाप उसको लगा हुआ, इसलिए रावण की सेना में इतना बल कहां से आएगा। तो पहले ही दिन युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर रावण की चौथाई सेना ही शेष रही, बाकी तिहाई सेना पहले के अंदर समाप्त हो गई।